पृष्ठ संख्या 152, 12। साहित्य का अंत हो जाने की तमाम उत्तर आधुनिक घोषणाओं और आशंकाओं के बावजूद 21वीं सदी में न रचनाओं के परिणाम में कोई कमी आई और न आलोचना के। प्रकाशकों और पत्रिकाओं की संख्या में इधर लगातार बढ़ोतरी ही हुई है। यह बात अलग है कि जितनी प्रयोगशीलता और शैलीगत फ्यूजन और रीमिक्सिंग यानी घाल मिल रचनाओं में दिखाई पड़ता है, उसके समानांतर परिवर्तन आलोचना में लक्षित नहीं होता। रचनाओं में प्रयोगशीलता की बढ़त का एक बड़ा कारण है दूसरी कलाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता, और दूसरा रंगमंचीय प्रश्नधर्मी कलाओं और फिल्मों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। एक ओर पश्चिमी लेखन के प्रभाव ने और दूसरी ओर लोक कलाओं के प्रति बढ़ते आकर्षण ने भी प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति में नए आयाम जोड़े हैं। शास्त्र और परंपरा निष्ठता की जकड़ तो आधुनिक युग में प्रवेश के साथ ही ढीली हो गई थी, पर इधर प्रयोग की स्वतंत्रता को जिस हद तक वैधता मिली है वह एक नई बात है। इसका गहरा रिश्ता मूल्य विघटन की उसी प्रवृत्ति के साथ है जिसकी शुरुआत विश्व में 20वीं शताब्दी के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिखाई पड़ी थी। जीवन में मूल्यों के विघटन और उनकी अवमानना के समानांतर साहित्य में भी परंपरा अथवा शास्त्र सम्मत प्रतिमानों की उपेक्षा को स्वाभाविक ही समझा जाना चाहिए। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ही कविता और कथा साहित्य पर समीक्षाओं के रूप में जो आलोचनात्मक लेख पत्र पत्रिकाओं और संग्रहों में सामने आ रहे थे, उनमें पारंपरिक प्रतिमानों पर तत्वाधारित या विश्लेषण के बजाय पाठ केंद्रित मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति आकार ले रही थी। ऐसी समीक्षाओं में अक्सर रचना का परिचयात्मक सार संक्षेप प्रस्तुत करने के बाद पृष्ठ संख्या 153 उनकी भाषा और संरचना पर विवरणधर्मी टिप्पणियां जोड़ देने में ही समीक्षक अपने दायित्व का निर्वाह कर लेते थे। कथा समीक्षा में जो अंतर्वेधी दृष्टि कभी सुरेंद्र चौधरी, विजय मोहन सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना में दिखाई पड़ी थी, वह विरल हो गई। यूं परिणाम में कथा समीक्षा में कोई कमी नजर नहीं आती। अकेले मधुरेश जी ने ही 1962 में लहर में प्रकाशित यशपाल पर आलोचनात्मक टिप्पणी से जो सिलसिला शुरू किया था वह बदस्तूर जारी है। उन्होंने बड़ी संख्या में समीक्षाएं ही नहीं की, हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी के विकास पर भी दो स्वतंत्र पुस्तकों की रचना की, जिनमें ऐतिहासिक विकास का ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ प्रवृत्तियों और रचनाओं पर पड़ने वाले बाह्य दबाव और सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आंदोलनों का मूल्यांकन करने का प्रयास भी किया गया है। इसी तरह की कथा समीक्षा में शंभु गुप्त की कहानी समकालीन चुनौतियाँ, कहानी वस्तु और अंतर्वस्तु, कहानी कभी भी खत्म नहीं होती उल्लेखनीय है। इस तरह की पुस्तकों से हिंदी कहानी में समकालीन परिदृश्य का जायजा तो लिया जा सकता है, पर कथा समीक्षा की जो शैली कभी नामवर सिंह की कहानी नई कहानी में सुरेंद्र चौधरी और बाद में विजय मोहन सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी की कथा समीक्षा में नजर आई थी, उसका ढब कुछ अलग ही था। कुछ विशेष कहानियों को चुनकर उनकी अंतर्वस्तु और शिल्प का सूक्ष्म विश्लेषण करने की पद्धति कथा साहित्य के इतिहास विकास का ब्यौरा प्रस्तुत करने से प्रकृति भिन्न होती है। पहली में कहानियों की बनावट के विश्लेषण के द्वारा उसके मर्म की पहचान और उद्घाटन का प्रयास किया जाता है, और दूसरी में उसकी प्रकृतिगत और दूसरी में उसकी प्रवृत्तिगत विकास यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत कर उसमें आने वाले परिवर्तनों को रेखांकित किया जाता है। दोनों दो तरह की जरूरतों को पूरा करती हैं, एक में आलोचकीय विवेक की प्रमुखता होती है और दूसरी में इतिहास दृष्टि की।